सुनेंगे
गौर
कथा चैतन्य महाप्रभु की लीला, और इसके बाद फिर आप देखेंगे
हरे कृष्ण
आए हुए कलाकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर ब्रज की बोले हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठाए तब तो भगवान का नाम लेते रहे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
अभी रिकॉर्डिंग
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित कनकाभ भुजौ कनकावनातौ संकीर्तनै कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंवरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो शिवानंद दास ठाकुर चैतन्य भागवत में सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आजानु आजानु लंबित भुजौ, जिनके हाथ जो है टूटने तक जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के हाथ टूटने तक जाते हैं और उनकी ऊंचाई करीब 7 फुट की थी, जो गौर कांति के हैं कनका बदाताओ, और जिन्होंने क्या किया संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया। संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनकी आंखें कमल सदृश हैं और जगत प्रिय पूरे जगत के पालक हैं, द्विजवरौ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और साथ में धर्म की स्थापना करने वाले हैं धर्म बालव और पूरे मानव समाज के ये प्रिय हैं और सभी अवतारों में सबसे ज्यादा जो है कृपालु है करुणा अवतार। तो आज हम आपको संक्षेप में बताएंगे कुछ गौर लीला के बारे में। समय कम होने के कारण या तो समय तो नहीं है हमारे पास, पिछले 2 दिन हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी शिवास पंडित के घर पे जो संकीर्तन होता था उसके बारे में आपसे हमने चर्चा की थी। आज हम नवदी मंडल के बारे में बताएंगे जिसमें विशेष रूप से जो अंतरद्वीप में जो लीलाएं घटित होती थी उन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आज जितना समय है आज बताएंगे और बाकी जो है हम लोग कल प्रस्तुत करेंगे। तो जिस तरह से ब्रज मंडल है उसी तरह से गौड़ मंडल भी है। गौड़ मंडल वो स्थान जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रकट की। ये गौड़ मंडल भी 84 कोस का है, जिस तरह से ब्रज मंडल 84 कोस का है उसी तरह जिस तरह वृंदावन 16 कोस का है उसी तरह से नवदीप मंडल भी 16 कोस का है। और इस नवदीप के मध्य में अंतर्द्वीप है जो कि 10 मील की परिधि में है। इसकी परिधि है 10 मील की। और इस अंतर्द्वीप के मध्य में है श्रीधाम मायापुर और इसकी परिधि है करीब 6 किलोमीटर की। और उस श्रीधाम मायापुर के मध्य में है योगपीठ जहां पर जगन्नाथ मिश्र और शशि माता का घर है और जिस घर में नीम वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और निमाई के नाम से जाने। तो नवदीप जो है वो राधा रानी की इच्छा से प्रकट हुआ। गोलोक धाम में राधा रानी की इच्छा हुई एक ऐसा द्वीप प्रकट करने के लिए जो वृंदावन सदृशी हो और उसका नाम पड़ा नवदीप। और वही नवदीप जो है यहाँ पर इस ब्रह्मांड के भीतर भी प्रकट होता है। जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्थान है जहां पर ब्रज है पृथ्वी में दिखाई पड़ता है उसी तरह से इसी पृथ्वी में नवदीप धाम भी है जो कि गौड़ मंडल में है। इस नवदीप धाम में 9 द्वीप है। गंगा जी की पूर्वी दिशा में 3 द्वीप है। पहला है सीमंत द्वीप और दूसरा है गोद्रुम द्वीप और तीसरा है मध्य द्वीप। ये जितने भी द्वीप है हर द्वीप में एक भक्ति के अंग की प्रधानता है। नवदीप के द्वारा नवदा भक्ति की जाती है या नवदीप के माध्यम से नवदा भक्ति का आनंद लिया जाता है और नवदा भक्ति के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा होती है। तो सीमंत द्वीप में श्रवण भक्ति की प्रधानता है, यहां पर श्रवण किया जाता है। और गोद्रुम द्वीप में कीर्तन किया जाता है, मध्य द्वीप में स्मरण किया जाता है। ये गंगा जी की पूर्वी दिशा में आता है। और जब आप मध्य द्वीप से कोलब द्वीप की तरफ जाते हैं पंचमणी को पार करते हुए, पंचमणी वो स्थान है जहां पर जिसको महाप्रयाग कहते हैं, जहां पर 5 नदियां बहती हैं, उस महाप्रयाग को पार करते ही पंचमणी को पार करते ही कोलब द्वीप आ जाता है। और कोलब द्वीप है गंगा जी के पश्चिम दिशा में। और ये जो कोलब द्वीप है ये पार सेवनम के लिए माना जाता है या पार सेवन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा होती है और उन भक्तों की सेवा होती है जो महाप्रभु के पार्षद हैं। कोलब द्वीप के बाद आता है ऋतुद्वीप। ऋतुद्वीप में 6 प्रकार के ऋतु होते हैं और इसी ऋतुद्वीप में राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। और ऋतुद्वीप के बाद आता है जानुद्वीप। जानुद्वीप जहां पर जानू मुनि ने अपना आश्रम बनाया और कि जिनकी जान से गंगा जी प्रकट हुई। जब भागीरथी को ला रहे थे, गंगा जी को ला रहे थे, तो जानू मुनि के आश्रम से गुजर रही थी गंगा। तो फिर जानू मुनि ने उस गंगा जी को पी लिया और बाद में जानू मुनि के जांग से गंगा जी प्रकट हुई। इसलिए नवदीप में गंगा जी को एक नाम और दिया गया है जानवी। और जानू द्वीप के बाद आता है मोद द्रुम द्वीप। और मोद द्रुम द्वीप के बाद आता है रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप कुछ भाग पश्चिम दिशा में भी है, गंगा जी की पश्चिम दिशा में भी है और रुद्रद्वीप का कुछ भाग पूर्वी दिशा में भी है। तो इस तरह से ये पाया जाता है। और रुद्रद्वीप के दक्षिण दिशा में है अंतर्द्वीप। सदर पार्ट में रुद्रद्वीप क्या आता है, दक्षिण दिशा में आता है अंतर्द्वीप। तो ये जो नवदीप है ये कमल सदृश है, कमल के फूल के समान है, इसमें आठ पंखुड़ियां हैं, आठ पंखुड़ियां हैं, और ये आठ पंखुड़ियां आठ द्वीप है, और इसके मध्य में अंतर्द्वीप है जो नवा द्वीप है, जिसको अंतर्द्वीप कहते हैं, अंतर्द्वीप। और नवद्वीप की आठ पंखुड़ियां हैं, और गौड़ मंडल की पंखुड़ियां 100 है, गौड़ मंडल भी कमल सदृश है, उसमें 100 पंखुड़ियां हैं। तो गौड़ मंडल तो नवद्वीप के बाहर जो स्थान पाए जाते हैं, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं प्रकट की, जैसे कि शांतिपुर है, फुलिया ग्राम है, या फिर एक चक्र धाम नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, या फिर बांग्लादेश में कई ऐसे स्थान है जहाँ महाप्रभु या उनके पार्षद प्रकट हुए, वो सारे स्थान जो है गौड़ मंडल में आ जाते हैं। तो हाल ही में पिछले कुछ सालों में नवद्वीप मंडल परिक्रमा के साथ अभी गौड़ मंडल परिक्रमा भी प्रारंभ हुई है, जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा के तुरंत ही बाद शुरू की जाती है, और कई भक्त लोग जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, और वहां पे भी महाप्रभु लीला स्थलों का दर्शन करते हैं। तो हम अंतर्द्वीप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अंतर्द्वीप जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को अपने आने का अंतरंग कारण बताया, कॉन्फिडेंशियल रीजन बताया, मुख्य कारण बताया। तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे चैतन्य महाप्रभु के मुख्य कारण के बारे में, विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी को दर्शन प्राप्त हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के, ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया कि उन्होंने अपराध किया है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ग्वालों और बछड़ों को चुरा कर वो पश्चाताप कर रहे थे, अपने आप को अपराधी मान रहे थे, और उन्होंने प्रार्थनाएं की थी भगवान कृष्ण के चरणों में, जो भागवत के दशम स्कंध के 14 अध्याय में आता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं आती है। लेकिन प्रार्थनाओं के बाद भी ब्रह्मा जी पश्चाताप करते रहे, और फिर उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की कि वो नवद्वीप जाए और वहां जाकर वो तपस्या करें। तो यहां पर आए, नवद्वीप में आए, और इस ग्राम का नाम है ऑटोपोर ग्राम, ऑटोपोर ग्राम। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने आके तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और ये बताया कि कलयुग में, आने वाले कलयुग में मेरे आने से पूर्व आपका प्राकट्य होगा एक यवन परिवार में, और उस यवन परिवार में रहते हुए आप अपने आप को बड़ा अधम मानेंगे, और आप नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के नाम से जाने जाएंगे, और प्रत्येक दिन आप 3 लाख नामों का उच्चारण करेंगे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया उन्होंने यवन परिवार में, लेकिन फिर बाद में वो उच्च कोटि के वैश्य बने, और इस प्रकार बूढ़न बेनापुर, बूढ़न एक जगह है बांग्लादेश में जहाँ उनका जन्म हुआ, और बाद में बेनापोल में उन्होंने भजन किया था, और उसके बाद फिर वो नवद्वीप भी आए थे, शांतिपुर भी आए थे। तो इस प्रकार ये अंतर्द्वीप में यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को अपने आने का अंतरंग कारण बताया। तो अंतर्द्वीप हमने बताया, ये अंतर्द्वीप के मध्य में महायोग पीठ है श्रीधाम मायापुर, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और अंतर्द्वीप में कई ऐसे स्थान हैं, एक है जिसका नाम है बलाल डिगी, पृथुकुंड, बलाल डिगी के पास ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और पृथुकुंड वो स्थान है जहां पर महाराज पृथु आए थे और पृथ्वी का पोषण कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता जो कि एक तरह के असुरी थे जिन्होंने पृथ्वी का शोषण किया था, तो महाराज पृथु प्रकट हुए और पृथ्वी का पोषण करते हुए नवद्वीप धाम पहुंचे, और यहां पर भी उन्होंने कुंड बनाया, और यहां पर महाराज पृथु को भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। तो यहां पे यह बताया जा रहा है कि जब योगपीठ मंदिर बन रहा था, योगपीठ जब मंदिर बन रहा था, तो वहां पर एक चतुर्भुज रूप अधोक्षर विष्णु का विग्रह प्राप्त हुआ, और ये विग्रह वो था जो जगन्नाथ मिश्र जिनकी सेवा करते थे, शची माता जिनकी सेवा करते थे, ये विग्रह प्राप्त हुआ। और इसी योगपीठ मंदिर में यहाँ पर शची माता के गर्भ से नीम वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और शची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती जो कि बहुत बड़े जोशी थे और गर्गाचार्य के अवतार थे, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनका नामकरण भी किया। इससे पहले शची माता की 8 कन्याएं हुई थी और एक एक करके उन सब की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने एक विशेष बालक को जन्म दिया जिसका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप महाशंकरषण ही है, बलराम जी के अवतार है, और विश्वरूप प्रकट हुए और विश्वरूप ने भी जल्दी ही छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था। अद्वैताचार्य का संग प्राप्त करके विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया और भारतवर्ष की यात्रा में वो निकल गए। तो निवाय चैतन्य महाप्रभु वो कौन है? स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी की कांति और उनके भाव को स्वीकार करके इस कलयुग में गौरव महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के कुछ मुख्य कारण है, कुछ गौण कारण है, तो आपको संक्षेप में बता देते हैं कि मुख्य कारण क्या है और गौण कारण क्या है। तो गौण कारण क्या है? युग धर्म की स्थापना, कली काले धर्म हरिनाम संकीर्तन। ये कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हर कलयुग में हरिनाम ही युग धर्म होता है, लेकिन हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं 999 कलयुग के बाद, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं तब उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सभी जीवात्माओं को क्या प्रदान करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि ब्रज प्रेम प्रदान करते हैं। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन जो गोलोक धाम से लेकर आते हैं और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसका वितरण करते हैं। कलयुग में राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की भक्ति करना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसका वितरण करते हैं, ब्रज प्रेम का वितरण करते हैं, तब यही कृष्ण प्रेम जो बहुत दुर्लभ है वो बहुत क्या हो जाता है? सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है और सबको ये प्राप्त होता है। तो पहला ये गौण कारण क्या है? युग धर्म की स्थापना करना। और दूसरा है, ये है एक मुख्य कारण, जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत में जो आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 श्लोकों में बता रहे हैं, एक श्लोक में बता रहे हैं मुख्य कारण और एक श्लोक में बता रहे हैं गौण कारण। मुख्य श्लोक में मुख्य कारण बताते हुए साथ में थोड़े गौण कारण का भी चर्चा कर रहे हैं और दूसरे श्लोक में पूरे मुख्य कारण का चर्चा कर रहे हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलव समर्पितम उन्नत उज्जवल साम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्वितीय कदम्ब सदीपिता सदा हृदय कंदरे स्मृतो वा शची नंदन। तो परम भगवान जो माता शची के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे हृदय के अंतकरण में वास करें, गौर कांति धारण करते हुए और अहितु की कृपा प्रदान करते हुए वो कलयुग में प्रकट हुए हैं और वो प्रदान करना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिया, पहले कभी नहीं दिया। वो क्या देना चाहते हैं? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। तो ये देते कैसे हैं? लेकिन उन्नत उज्ज्वल रस देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के माध्यम से। और उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण, इंटरनल रीजन उसको कहते हैं, वो क्या है, श्री राधा या प्रणय महिमा कि दृश्यो वान्येव। इसे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मुख्य कारण क्या है, वो जानना चाहते हैं कि राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। ये जान नहीं पाए, कौन नहीं जान पाए, कृष्ण नहीं जान पाए ब्रज की लीलाओं में राधा रानी की प्रेम की महिमा, ये पहला मुख्य कारण। और दूसरा बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी जिस रूप में, जिस तरह में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करती हैं, उसी तरह से कृष्ण भी आस्वादन करना चाहते हैं। ये दूसरा कारण, ये एक और कारण बता रहे हैं। और एक और कारण और भी बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी को इस रूप माधुर्य का आस्वादन करते हुए जो आनंद मिलता है, उस आनंद की अनुभूति श्री कृष्ण भी करना चाहते हैं। तो ये और तीन मुख्य कारण बताए, तो इस तरह से ये कारण बताए गए हैं। और एक कारण और है, अद्वैत आचार्य की पुकार। अद्वैत आचार्य जो कि शांतिपुर में रहते थे, शांतिपुर में उनका घर था, लेकिन वो नवद्वीप में रहने लगे थे, शिवास पंडित के घर के निकट अद्वैत भवन जिसको कहते थे, तो वहां पे वो रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के उपरांत अद्वैत आचार्य शांतिपुर में जाके रहने लगे। तो उसके बाद अद्वैत आचार्य ने निरंतर प्रार्थना की। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना क्या की कि नवद्वीप में क्या हो रहा है, अधिकांश लोग विषयी बनते जा रहे हैं, अधिकांश लोग इंद्र तर्पण करने के लिए चंडी और काली की पूजा कर रहे हैं, विषयी बनते जा रहे हैं। तो इसलिए अद्वैत आचार्य बहुत ज्यादा दुखी हो गए। यहां तक जो वैष्णव भी थे वो घरों में छुप छुप कर क्या करते थे, भक्ति करते थे या हरिनाम लेते थे, लेकिन खुले रूप में कोई भक्ति करता हुआ नहीं दिखाई देता था। तो अद्वैत आचार्य, हरदास ठाकुर ये सब बहुत दुखी थे, ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अद्वैत आचार्य ने तो यहां तक सोचा कि अगर भगवान कृष्ण नहीं प्रकट होंगे, क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में इनका उद्धार कर सकते हैं, अगर वो नहीं प्रकट होंगे तो मुझे स्वयं क्या करना पड़ेगा, सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा और इनका संहार करना होगा। तो अद्वैत आचार्य इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। और जब फाल्गुन पूर्णिमा का समय आया, माघ मास में 1486 में, उन्होंने क्या सुना, नवद्वीप में अद्वैत आचार्य और साथ में हरदास ठाकुर और जो अन्य भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही प्रकट हो गए थे, उन्होंने पूरे नवद्वीप में क्या सुना, हरि नाम संकीर्तन सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से महामंत्र संकीर्तन सुना, हरि नाम सुना, तो अद्वैत आचार्य बड़े खुश हुए। क्यों, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, चंद्र ग्रहण लगा था, पूर्णिमा का दिन तो था लेकिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, और ग्रहण के कारण जितने भी नवद्वीपवासी थे वो गंगा जी के भीतर चले गए स्नान करने के लिए, गंगा जी के भीतर ही खड़े रहे और साथ में सब लोग हरी बोल करके हरि नाम लेते रहे। तो अद्वैत आचार्य ने और हरिदास ठाकुर ने सोचा कि बड़ा अच्छा हो कि ये क्या ग्रहण लगा रहे और ये इसी तरह से हरि नाम लेते रहे, कि ग्रहण कभी समाप्त ना हो, तो ग्रहण समाप्त हो गया तो ये सब गंगा जी से वापस बाहर आ जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य ने सबसे प्रार्थना की कि ये ग्रहण लगा रहे और इसी तरह से नवद्वीप के जो लोग हैं, नवद्वीपवासी जितने हैं, वो हरि नाम संकीर्तन करते रहे। तो अद्वैत आचार्य की प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये जो साल है 523वां साल है चैतन्य महाप्रभु के आने का, 523वां वर्ष है ये, 1486 से लेकर अब 523 साल हो चुके हैं। 523 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे श्रीधाम मायापुर में हरे कृष्ण, और उस तारीख थी 28 फरवरी। 28 फरवरी को 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इस प्रकार चारों तरफ से हरिनाम चल रहा था, गुंजायमान था, चारों तरफ हरिनाम संकीर्तन, और बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु निमाई क्या थे, बड़े ही चंचल थे। और एक दिन की बात है, जगन्नाथ मिश्र के घर में हम ये जो लीलाएं बता रहे हैं, फिर से बताना चाहते हैं कि जो लीलाएं बता रहे हैं ये वो लीलाएं हैं जो अंतरद्वीप में घटित हुए। और उससे पहले कि ये अंतरद्वीप की लीलाएं बताएं, हम संक्षिप्त रूप में उनका पूरा जीवन चरित्र भी आपको बता रहे हैं कि पूरा जीवन चरित्र क्या है, कैसे कैसे उन्होंने अवधि में लीलाएं की और कैसे वो फिर संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए और फिर भारतवर्ष की यात्रा भी की। तो बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु जो घर में थे, जगन्नाथ मिश्र के घर पे, शची माता के घर पे, शची माता कौन है, स्वयं माता यशोदा है, और जगन्नाथ मिश्र कौन है, स्वयं नंद महाराज है। तो शची माता के घर में एक बार आंगन में क्या हुआ, निमाई क्या करते थे, एक सांप के साथ खेल रहे थे और सांप के साथ खेलते रहे, तो जब देखा शची माँ ने आगे देखा तो उस समय क्या देखा कि निमाई जो है उस सांप के ऊपर क्या है, बड़े आराम से लेटे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात अनंत शेष जो है सर्प के रूप में आए हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर में आए हैं और निमाई की सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही देखा कि घर वाले जितने उनके हैं वो भयभीत होने लगे हैं, तो सांप क्या किया, अपने आप ही वहां से चला गया। और एक बार एक चोर आया और योग माया के द्वारा भ्रमित हो गए चोर, और उन्होंने निमाई को बड़ा सुसज्जित रूप में देखा, आभूषणों से युक्त देखा, उनके सुंदर रूप को देखकर योग माया से आच्छादित होकर उन्होंने क्या किया, चोरों ने निमाई को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया और नदी में घूमते रहे। और नदी में जब घूमते रहे तो निमाई को बड़ा आनंद आया, निमाई ने सोचा आज तो मुझे घूमने का मौका मिल गया है, तो वह बहुत खुश हुए निमाई। और घूमते रहे जब सूर्यास्त हो गया तो वापस कहां पहुंचे, वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुंच गए। और जगन्नाथ मिश्र के घर में जब पहुंचे तो चोर ने देखा और चोर ने सोचा अरे ये लड़का तो लगता है मायावी है, और ये सोचकर वो डरकर भयभीत होकर उन्होंने क्या किया, चोर ने निमाई को छोड़ दिया। लेकिन निमाई की इतनी अतिशय कृपा हुई उन चोरों के ऊपर, क्योंकि उन चोरों ने निमाई को कंधे पर बिठाकर ये सेवा की, तो निमाई ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उन चोरों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं और बिना किसी कारण के अहित की कृपा करते हैं और पतित से पतित जीवात्मा को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं बिना किसी कारण के। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यकाल में थे उस समय विश्व रूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। विष्णु क्या करते थे, अद्वैत आचार्य के घर पर जाते थे प्रत्येक दिन और अद्वैत आचार्य का सारिध्य संग प्राप्त करते थे और रोज उनसे कृष्ण कथा सुनते थे और वहां पर साधु संग होता था। तो विष्णु ने जब बहुत ज्यादा अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त कर ली तो उनकी संन्यास लेने की इच्छा हुई और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास कैसे लिया, रातों रात चले गए घर छोड़कर। और इसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु जब थोड़े से बड़े हुए और उनका समय आया, पढ़ने का समय आया, तो गंगादास पंडित के पाठशाला में भर्ती हुए, जिनके साथ गदाधर पंडित भी थे, दामोदर पंडित भी थे, जगदानंद पंडित भी थे, मुकुंद दत्त भी थे, और उसके बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने अपने ही घर में उन्होंने एक पाठशाला खोल दी जहां पर वो अपने मित्रों को क्या सिखाते थे, संस्कृत व्याकरण सिखाते थे, बच्चों को वहां पर संस्कृत व्याकरण सिखाते। और ऐसे ही घाट में उन्होंने केशव काश्मीरी जो दिग्विजय था, जो उसका अहंकार को चूर किया, दिग्विजय का केशव काश्मीरी आया हुआ था और वहां पर आकर वो अपनी विद्वत्ता प्रस्तुत करना चाह रहा था। नवदीपवासी बड़े चिंतित थे कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि इस समय नवदीप जो था विद्या का केंद्र था, लेकिन केशव काश्मीरी अगर ब्राह्मणों को अगर हराएंगे तो फिर क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये है कि निमाई पंडित को आगे रखा जाए, क्योंकि अगर हम ये निमाई पंडित हार भी जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इसने तो एक बच्चे को हराया है, और अगर निमाई जीत जाता है तो हम बोल सकते हैं अगर बच्चे ने हरा दिया है तो फिर हमारी क्या बात। तो इस प्रकार से ब्राह्मण लोगों ने योजना बनाई थी। और इसके उपरांत अंतरद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने निमाई पंडित ने दो बार विवाह किया, पहली बार लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया लक्ष्मी प्रिया का तिरुभाव हो गया, वह प्रकट हो गए जब विमाय पूर्वी बंगाल गए थे और जो वापस लौटे थे विरह के कारण लक्ष्मी प्रिया अप्रकट हो गए और वैकुंठ धाम चले गए। उसके उपरांत निमाई ने विष्णु प्रिया से विवाह किया और उस विवाह के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए वहां जाकर श्रीपाल ईश्वरपुरी से उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेने के उपरांत निमाई पंडित उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रसार प्रसार किया और जब वापस लौटे तो एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त के रूप में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, क्योंकि इससे पहले वो ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है वैराग प्रकट किया और उन्होंने अपनी माँ शशि और विष्णुप्रिया अपनी पत्नी विष्णुप्रिया को छोड़कर सन्यास आश्रम ग्रहण किया कठुआ में। और बाद में सन्यास लेने के उपरांत शांतिपुर में माता शशि ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि आप वृंदावन में जाओ, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप जगन्नाथपुरी में ही निवास करो ताकि कम से कम आपके बारे में मुझे लगातार समाचार प्राप्त हो। और उसके बाद जगन्नाथपुरी छोड़कर परी दक्षिण भारत की उन्होंने यात्रा की, जहां पर उन्होंने भक्ति तत्व की चर्चा की श्री रामानंद राय से और गोदावरी नदी के तट पर। और इस प्रकार जगन्नाथपुरी में 24 साल रहे, जिससे पहले 6 साल उन्होंने यात्रा की दक्षिण भारत की, वृंदावन की और अन्य स्थानों की। और इसके 18 साल जो है वो जगन्नाथपुरी में रहे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के संपर्क में रहे और गंभीरा में काशी मिश्र के घर पे, और प्रत्येक दिन वहां पर टोटा गोपीनाथ में जाकर गदाधर पंडित से श्रीमद भागवत का भी वो श्रवण करते। और गंभीरा में वहां पर लगातार स्वरूप दामोदर से, रामानंद राय से गीत गोविंद सुनते और या तो फिर विद्यापति के या चंडीदास के भी गीत सुना करते श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर रामानंद राय से। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया था और उसके बाद विष्णुप्रिया जो है बहुत ज्यादा विरह महसूस कर रही थी, तो उनकी देखभाल करते थे ईशान ठाकुर जो कि उनके घर पे सेवा के रूप में थे, साथ में थे वंशी वदनानंद, उनकी सेवा करते थे। विष्णुप्रिया के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विग्रह प्रकट किया, अपना ही विग्रह प्रकट किया। अगर आप जाएंगे नवद्वीप जाएंगे तो वहां पर कोलम द्वीप में उस विग्रह का आज भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिनको धामेश्वर महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। तो विग्रह के समक्ष विष्णुप्रिया प्रत्येक दिन क्या करती, वो चावल का एक एक कण रखती और एक कण के हिसाब से वो एक माला पूरी करती। और जितने जब उनकी संख्या पूरी हो जाती तो जितने कण वहां एकत्रित होते चावल के, उस चावल के कणों को लेकर वो धामेश्वर महाप्रभु को भोग लगाती और उसी का वो प्रसाद ग्रहण करती। इस प्रकार दिन रात विरह में रहकर वो महाप्रभु का गौर सुंदर का स्मरण करती। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के विरह के कारण नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, शिवास पंडित, ये सभी नवदीप जो है धाम छोड़कर वहां से चले गए। तो इस प्रकार नवदीप धाम जो है एक तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, वो गंगा जी से सारा भर गया। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद नवदीप धाम जो है वो गंगा जी से ढक गया। तो ये नवदीप धाम जो है कई सालों तक गंगा जी तक ढका रहा, सैकड़ों सालों तक। और बाद में धीरे 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 सैकड़ों सालों के बाद नदी धाम धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करने लगा। और बाद में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर नदी धाम आए थे। भक्तिनाथ ठाकुर वो महान आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, जिन्होंने पहली बार नदी धाम में प्रवेश किया। और वो ये महान व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को पता लगाया। भक्तिनाथ ठाकुर नदी धाम में आए, हालांकि उनकी इच्छा थी कि अब वो ब्रिटिश सरकार से वो अपना इस्तीफा दे दे और नदी धाम में निवास भी करना चाहते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि आप निकट में रहे कृष्णा नगर में और आप साथ में सरकारी कार्य भी करते रहे। तो भक्तिनाथ ठाकुर के कहने पर ब्रिटिश सरकार ने उस समय क्या किया, कृष्णा नगर से उनके घर बुद्रुक द्वीप में स्वरूपगंज जहां पर कहते हैं उनके घर के बाहर तक रेलवे लाइन बिछा दी। भक्तिवर ठाकुर के घर के बाहर वहां से रेलवे लाइन शुरू होती है, रेलवे में वहां से चलती है और वहां से वो ट्रेन पकड़ते और ट्रेन पकड़ के वो कृष्णानगर जाते अपने दफ्तर जाते और शाम को फिर दफ्तर से बाहर निकलते। दफ्तर से जैसे बाहर आते ट्रेन पकड़ के बाबू घर के सामने चल जाते। तो भक्तिवर ठाकुर वहां रहकर उन्होंने नवदीप में जितने भी लीला स्थलियां हैं उन सब का पता लगाया और उस समय उन्होंने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है नवदीप धाम महात्म्य, जिसमें भक्तिवर ठाकुर ने नवदीप मंडल परिक्रमा के बारे में वर्णन किया है और अपना भाव व्यक्त किया है इस परिक्रमा के दौरान। तो भक्तिवर ठाकुर एक धर्मशाला में उस समय रहने लगे थे, ये घर बनने से पहले, जिसका नाम था रानी धर्मशाला। उस धर्मशाला से उन्होंने रात्रि के समय एक प्रकाश देखा और उनके साथ उनके सुपुत्र भी थे जिनका नाम था ललिता प्रसाद ठाकुर। तो उनको बोला देखो सामने प्रकाश देखो दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो उनके जो लड़के थे उनको तो दिखाई दिया लेकिन साथ में एक मित्र भी थे, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रातःकाल उस स्थान में गए भक्तिवर ठाकुर गए और उस स्थान में जब गए वो बलाल डिगी का इलाका था और उसके बाद वो स्थान था जहां पर चारों तरफ के आधा तुलसी के पेड़ थे और वहां के लोग बोलते थे यहाँ तो तुलसी के अलावा कुछ उगता ही नहीं है। और कई सैकड़ों साल पर जब गंगा जी यहाँ पर गंगा जी का प्रभाव बढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी, तो लोग जो है गंगा जी की पश्चिम दिशा में चले गए थे और यहीं पर पहले मायापुर भी था तो वहां के जो मुसलमान लोग थे मायापुर को मियापुर कहते थे। तो भक्तिवर ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर के आधार पर, श्री चैतन्य भागवत के आधार पर और श्री चैतन्य चरितामृत के आधार पर यह स्थापित किया कि वास्तव में नवदीप धाम यानी श्रीधाम मायापुर है वो गंगा जी के पश्चिम दिशा में नहीं है, गंगा जी के पूर्वी दिशा में है। तो इस तरह से भक्तिवर ठाकुर ने रात को जब प्रकाश देखा था, प्रकाश में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा पंच तत्व को संकीर्तन करते देखा, नृत्य करते देखा। और बाद में ठाकुर भक्ति विनोद वहां से कुलियाग्राम गए और वहां से वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को साथ में लेके आए जो लगभग उस समय 142 साल के थे, उनको टोकरी में लाके लेके आया गया था। उनके जो सेवक थे उनको टोकरी में उठा के लेकर आए और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब वहां पहुंचे, योगपीठ पहुंचे और जैसे उन्होंने जन्म स्थान देखा उन्होंने कहा यही तो निमाय जन्म स्थान, ये तो निमाय का जन्म स्थान है। और ऐसा कहकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज लगभग 10 फुट ऊपर जो है उछले और फिर उसके बाद उन्होंने भाव में जो है वहां पर नृत्य कीर्तन किया। तो इस तरह से भक्तिवर ठाकुर ने जो जन्म स्थान पता लगाया उस जन्म स्थान में भक्तिवर ठाकुर ने सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया जहां पर उन्होंने गौर सुंदर लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के विग्रह की स्थापना की, साथ में पंचतत्व विग्रह की भी स्थापना की। बाद में श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने वहां पर राधा माधव के विग्रह की स्थापना की और गौर सुंदर के विग्रह की स्थापना की और योगपीठ में जो बड़ा मंदिर है वो भी श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने बनवाया। और आज श्री प्रभुपाद की कृपा से क्योंकि प्रभुपाद ने महान आचार्यों के आदेश के अनुसार ये प्रचार का कार्य, प्रचार का बीड़ा अपने हाथ में उठाया, आज श्री प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे पृथ्वी में हम लोग मायापुर धाम के बारे में जान पा रहे हैं। नहीं तो हम भक्त लोग ना इस्कॉन मानसर वाले ना नवदीप के बारे में जानते थे, ना मायापुर जानते थे, ना ये जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है या नित्यानंद प्रभु कौन है। तो ये सारा जो श्रेय है श्री प्रभुपाद को जाता है जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, जिन्होंने श्रीधाम मायापुर के बारे में बताया। तो प्रभुपाद की कृपा से आज हजारों की तादाद में नवदीप जा रहे हैं, श्रीधाम मायापुर भक्त लोग जाते हैं और वहां पर उनके शिष्यों के द्वारा आज बहुत विशाल पंचतत्व विग्रह की स्थापना भी हुई है। और प्रभुपाद की इच्छा थी कि वहां पर एक अद्भुत मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ये भविष्यवाणी किसकी थी, इस अद्भुत मंदिर की भविष्यवाणी स्वयं नित्यानंद प्रभु ने की। भक्तिवर ठाकुर ने लिखा है नवदीप धाम आते में कि नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को उस दिशा में दिखाते हुए कहा कि एक समय आएगा कि यहाँ पर अद्भुत मंदिर बनेगा और यहाँ से क्या होगा, गौरव महाप्रभु की लीलाओं का प्रकाश होगा। तो उसी मंदिर की तैयारी हो रही है, उस विशाल मंदिर की तैयारी हो रही है और इस मंदिर को बनाने की आज्ञा श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों को दी है। और प्रभुपाद ने बताया कि ये मंदिर जब बनेगा तो हजारों की तादाद में भक्त रहेंगे, आएंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे प्रभुपाद ने कहा हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए श्रीधाम मायापुर में कि कम से कम 50,000 लोग एक साथ रह सके वहां पर, ऐसी व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए। वास्तव में प्रभुपाद उनके शिष्यों को बहुत श्रेय जाता है। अगर आज भी आप जाएंगे स्वामी के मंदिर में, मायापुर चंद्रोदय मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि केवल हमारा ही मंदिर है जहां पे चारों तरफ प्रकाश रहता है। मंदिर से जैसे ही आप बाहर आएंगे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, अभी भी चारों तरफ अंधकार है क्योंकि कुछ नहीं दिखाई देता दूर दूर तक, और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ प्रकाश नजर आएगा। तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि आज की कृपा से अनेकों भक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर जा रहे हैं और क्षेत्रीय महाओं की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। कल गौर पूर्णिमा का महोत्सव है तो आगे हम लोग कल और चर्चा करेंगे अंतर्द्वीप के बारे में और जो वहां पर लीलाएं हुई उसके बारे में आपको कल और बताएंगे। तो आज इतना ही कहकर विराम देते हैं क्योंकि आज हमारे समक्ष अभी होली की लीला भी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उसका भी आप आरंभ लें। हम फिर से JCC की जो सदस्य हैं, हमारे फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन श्री एम एन सतीजा जी और JCC के चेयरमैन श्री हृषिकेश वेद व्यास प्रभु, और हमारे बीच में हमारी स्टेयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन मिस मीरा गोयल जी, और साथ में उनके हमारे मिस्टर गोयल जी, उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि आज वो यहाँ पर पधारे हैं और कार्यक्रम का उन्होंने शोभा बढ़ाया है। आप सबको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं श्रोतागण, जिन्होंने यहाँ पर आके इस कार्यक्रम का और भी ज़्यादा गौरव बढ़ाया है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कल सुबह आप लोग कृपा करके प्रयास करें कि मंगल आरती में ही आ जाए 4:30 बजे और सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, सुबह भी कथा कीर्तन होगी और कल शाम को 5 बजे अभिषेक होगा, चैतन्य महाप्रभु का गौरताय का अभिषेक कल हम देख पाएंगे, शाम को 5 बजे प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद चंद्रोदय के बाद हम लोग फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, चंद्रोदय तक उपवास रहेगा। और कल भी यहाँ पर पंडाल कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जैसे कि आज हमने बहुत सुंदर नाटिका देखी, कल भी गौर लीला के ऊपर यहाँ पर बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सबसे प्रार्थना करते हैं कल भी आप सभी भक्त लोग आए, ये कहते हैं धन्यवाद करते हैं आप सबका। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, भक्तवृंद की, बहुत प्रेमानंद का,
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन प्रभु का। तो 3 बार हरि बोल बोलेंगे, बोले हरि बोल, हरि बोल।